जुलाई 2014 में राहुल गांधी के सूट बूट की सरकार के तंज ने मोदी सरकार को हिला दिया था। इसके बाद के 5 सालों में मोदी ने वो सारे काम किए जिससे उनकी सरकार अमीरों की सरकार न मानी जाए। आज मोदी खुद को भारत का निर्विवाद नेता साबित कर चुके हैं, लेकिन एक चुनौती उनके सामने बनी हुई है। ये चुनौती उनका दिमाग है, जिसका झुकाव वामपंथी नीतियों की तरफ हो गया है। उन्हें दिमाग से यह बात निकालनी होगी कि सरकार को पूंजी को बढ़ावा देती हुई नहीं दिखना चाहिए। मोदी के दूसरे कार्यकाल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी, क्योंकि यह बात सबको पता है कि गरीब कम करने के लिए भारी निवेश की ज़रूरत है। हम भी जानते हैं कि यह काम निजी क्षेत्र के निवेश से ही हो सकता है, क्योंकि भारत में पूंजी सीमित है और निजी क्षेत्र इसका कहीं असरदार ढंग से इस्तेमाल करता है। इसलिए मोदी को प्रो कैपिटल पॉलिसी को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि प्रो कैपिटल होने का मतलब प्रो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद समर्थक होना नहीं है। काफ़ी पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट कैपिटल को दबाया जाता था और पब्लिक सेक्टर की कीमत पर चहेते पूंजीवादियों को बढ़ावा दिया जाता था। दुनिया का आर्थिक इतिहास बताता है कि जिन सरकारों ने निजी पूंजी को बढ़ावा दिया, उन्होंने तेज ग्रोथ हासिल की। इसलिए हमें ऐसे कानून की ज़रूरत है जो पूंजी से भेदभाव न करता हो। निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए बेहद ज़रूरी है। चीन ने भी ऐसा ही किया था। 1970 के बाद भारत इस मामले में बुरी तरह नाकाम रहा। इससे पहले निजी क्षेत्र से निवेश को बढ़ावा देने के मामले में उसका प्रदर्शन बढ़िया रहा है। 1970 के बाद सरकारी नीतियों के जरिए राजनीतिक हित साधे जाने लगे। निवेश और ग्रोथ की कीमत पर लेफ्ट से प्रेरित होकर सरकारी संपत्ति के बंटवारे पर अधिक जोर दिया जाने लगा। ईशर आलूवालिया की 1983 में लिखी किताब में इसे बड़े करीने से समझाया गया है। मोदी ने पहले कार्यकाल में नीतियों को खत्म नहीं किया, क्योंकि वह दोबारा सत्ता में आना चाहते थे। इंडिया शाइनिंग कैंपेन की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का जो हश्र हुआ था, मोदी उससे बचना चाहते थे। दोबारा सत्ता में आने का मकसद वह हासिल कर चुके हैं, इसलिए उन्हें देश को इस मामले में एक बदलाव के साथ नेहरू के दौर के अधिक निवेश वाले मॉडल की तरफ ले जाना होगा। नेहरू को सरकारी निवेश इसलिए बढ़ाना पड़ा था क्योंकि निजी क्षेत्र यह काम नहीं कर पा रहा था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। मोदी को पहल करके इसके लिए निजी क्षेत्र की मदद लेनी होगी। नेहरू ने सरकारी निवेश बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर पहल की थी। नेहरू के मॉडल से यह मोदी का अलग और अपना रास्ता होगा। उन्हें टैक्स, इंपोर्ट, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट जैसी सारी पॉलिसीज निजी क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखकर बनानी होगी। पब्लिक सेक्टर को खत्म करना होगा। यह अभिशाप है। मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया जाए, लेकिन सरकार सिर्फ ट्रांसपोर्ट और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे, जैसा कि चीन ने किया। यहाँ तक कि पावर सेक्टर का भी निजीकरण कर देना चाहिए, जिसे कांग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर मानती है। पावर सेक्टर की वजह से राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है। इसके लिए पैसा बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र को सरकारी जमीन बेचकर जुटाया जाना चाहिए, जैसा कि चीन ने किया। रियल स्टेट सेक्टर में उतार चढ़ाव के बावजूद ऑफिस और आवासीय योजनाओं के लिए जमीन की असीमित मांग है। एक लाइन में कहूं तो मोदी को अब कांग्रेस की नकल करनी बंद कर देनी चाहिए। उन्हें कांग्रेस मॉडल से पीछा छुड़ाकर निजी पूंजी को पुरजोर समर्थन देना चाहिए। आरएसएस के साथ रिश्ते में उनका पड़ला भारी है। इससे निजी पूंजी को बढ़ावा देने का रास्ता तैयार हो गया है।